ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आप ये मंथन केवल और केवल गूगल मीट पर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय से आदेश हुआ है कि मुरली मंथन केवल आप गूगल मीट, जूम, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के द्वारा लाइव क्लास में कर सकते हैं, परंतु इसकी वीडियो बनाकर भेज नहीं सकते, वीडियो नहीं बना सकते, YouTube पर नहीं डालेंगे, जो दूसरे साधन है फेसबुक वगैरह इन पर नहीं डालेंगे, इसलिए केवल आप गूगल मीट पर ही इस पे जुड़ सकते हैं, ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड भी नहीं करें और इसको किसी को भेजें भी नहीं। किसी भी प्रकार से यदि कोई इसे रिकॉर्ड करता है और इसे भेजता है तो वो स्वयं जिम्मेवार है। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इसको रिकॉर्ड नहीं करे। ये हम गूगल मीट पर देख रहे हैं, इसे यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, इसलिए सबके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है। जो भी जुड़ना चाहता है वो गूगल मीट पर जुड़ सकता है, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जिस पर आप गूगल मीट पर सवेरे 4 बजे, 6 बजे या शाम को 4 बजे, 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो या किसी भी वीडियो में जो भी आप देख रहे होंगे उसके नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में देखेंगे नीचे 9650692270 ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, उस पर आप मैसेज करके गूगल मीट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। कब कहा था ये थोड़ा समय है? कब कहा था बाबा ने कि थोड़ा समय है? 69 से भी पहले, 69 से भी पहले कहा गया था कि थोड़ा समय बाकी है। अब कितना समय होगा? अब भी थोड़ा समय होगा। हमें हर वक्त याद रखना है कि अगला पल आखिरी, यही पल है, हमें इस पल में ही जीना है, इस पल को हमने एंजॉय करना है, इस पल को हमने बाबा की श्री मत पर चलाना, यही हमारे भाग्य लिखने का आधार है। और कोई हांजी क्या हुआ?
हर पल थोड़ा समझ में आएगा।
हाँ, हर हर पल
आज आवेदवाजी ले लेना था ना।
आप थोड़ा माइक का कुछ इंतजाम करो भाई जी, मैं नहीं सुन पाता हूँ आपकी बात को, क्या कर रहा हूँ। मीनू बहन जो बोलती है ना, मीनू बहन की आवाज अच्छी तरह समझ में आती है, एक दो बहनों की आवाज क्लियर आती है। हाँ, ये भी जो है ना बहन जी की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आई।
हाँ
अब आ रही है।
आज आवेद तो वाली लेने की थी ना, आज
आज क्या बार है?
नहीं
आज तो फ्राइडे ना भाई जी, पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, याद रहता है कि अब हमें घर जाना है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? अपने आप को मेहमान समझेंगे, वो व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में केवल और केवल बाबा की ही बात रहेगी, बाबा की ही बात को सुनेंगे, बाबा की ही बात पर चलेंगे। वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, वो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य रहेगा, उनको क्या रहेगा? बेहद का वैराग्य रहेगा। हद का वैराग्य नहीं, बेहद का, मीन्स कंप्लीट। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उनको अपनी तरफ किसी भी प्रकार से आकर्षित कर सके, अपनी तरफ खींच सके, कोई भी बात उनको खींच नहीं सकेगी। धंधा धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, धंधा धोरी करते भी क्या रहेंगे? वो हल्के रहेंगे, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में नहीं आएंगे, इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में नहीं आएंगे। अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे कि हम तो इस दुनिया में मेहमान हैं। मेहमान को जिसके घर वो जाता है उसकी किसी भी वस्तु को अपना नहीं समझता, उनकी डायरेक्शन पर जितना मर्यादा में यूज करने का होता है वो केवल उसे उतना ही यूज करता है। ठीक है, ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़ा थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान, थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम, तुम्हारा सच्चा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते, मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहां से, कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे, वो है शांति धाम और ये है दुख धाम। ये नंबर वार वहां जाएंगे, इसका क्या मतलब होगा, कौन समझाएगा? हम वहां नंबर वार जाएंगे, इसका क्या मतलब है? परम अवस्था तो सिर्फ परमात्मा की होती है, बाकियों की होती है चरम अवस्था। हर एक आत्मा की चरम अवस्था अलग अलग है, ये नंबर वार है, परंतु जाएंगे सारे एक साथ। ये नहीं कि लेट हो जाए वो जाने में, कोई भी आत्मा जाएंगे घर एक साथ, परंतु उनकी जो पोजीशन होगी, उनका जो रिजल्ट होगा वो नंबर वार होगा। बाबा ने कुछ मूल्यों में कहा जो बहुत अच्छी तरह बाप समान बनेंगे वो बाप के साथी बन के जाएंगे, जो थोड़ा कम रहेंगे वो घराती बन के जाएंगे, जो बहुत कम होंगे वो बराती बन के जाएंगे, पीछे पीछे जितना नंबर कम होगा उतना पीछे पीछे जाएंगे। मतलब इससे ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई रास्ता है और उस रास्ते के ऊपर चल करके वहां पहुंचना है, परंतु ये बात बाबा ने केवल बच्चों को समझाने के लिए, अब उनको ये समझाना कि कितना तुम शक्तिशाली बनेंगे, कितना बाप समान बनेंगे, उतना तुम सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। ये मैरिट केवल ऊंच पद पाने के लिए है, ना कि जाने के लिए। जाना तो लास्ट आत्मा को भी फर्स्ट आत्मा को भी एक ही साथ परमात्मा के साथ सभी आत्माएं एक ही सेकंड में घर जाएंगी। ये बात आपने बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखना। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबर वार वहां जाएंगे, वो है शांति धाम, ये है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना, कोई भी बुढ़े हो वह जवान हो ये तो याद कर सकते हैं, कोई भी बुढ़े हो वह जवान हो ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है, हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा प्लान अनुसार ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी, हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वे भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग की बातें बाप समझा रहे हैं। मीठे बच्चे अब अपना घर याद आता है, कितना सुनते रहते हैं हो, इतनी इतनी ढेर बातें सुनते हो, एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं, शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा, इस दुनिया में तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई क्या रहेगा। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर, मधुबन में तो कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, और जब अपने घर में जाएंगे तो बुद्धि झरमुई झगमुई, व्यर्थ की बातों में तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, अपने धंधे तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं है, यहाँ पर तो वे झंझट नहीं है। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी, हम आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ हम पार्टधारी बने हैं और कोई को ये पता नहीं कि हम पार्टधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले क्या थे, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे, हम आपस में भाई भाई हैं। वा भूल गए हैं भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। आजकल तो मिल्कियत के लिए खून कर देते हैं। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं 5000 वर्ष पहले वापिस हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानता, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता, बाप ही क्या है, स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, संसार को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है। क्या समझ में आई है बात? बाप है स्वर्ग का रचयिता। नई बात, क्या नई बात समझ में आ रही है मुरली में? बाप है स्वर्ग का रचयिता, सृष्टि का रचने वाला नहीं कहेंगे। बताओ भाई, ठीक है या डाउट है? हाँ जी, सृष्टि अनादि और अनंत है। आत्माओं को वो पैदा नहीं करता, कल हमने देखा अच्छी तरह से। परमात्मा आत्मा को पैदा नहीं करता, परमात्मा पानी को पैदा नहीं करता। परमात्मा पांचों तत्व या विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्वों में से किसी भी तत्व को पैदा नहीं करता, ठीक है? जब वो किसी भी तत्व को पैदा नहीं करता तो
हाँ
जी,
अरे तत्व को अपने मूल स्वरूप में लाने की क्रिया तो करता है ना?
वो स्वर्ग बनाने का काम करता है। बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि जब वो पांचों तत्वों की रचना नहीं करता, हम आत्माओं की रचना नहीं करता, समय की रचना नहीं करता, क्योंकि हम एक लाइन कहते आए हैं, यदि तीनों में से कोई किसी दूसरे की रचना करे, क्योंकि ये तीन सत्य हैं, आत्मा, परमात्मा नहीं कहा हमने, आत्मा, परमात्मा भी एक आत्मा है, आत्मा, प्रकृति और समय, ये तीन सत्य हैं। इन तीनों सत्यों में से यदि कोई एक सत्य किसी दूसरे की रचना कर देता है तो उसका आरंभ हो जाएगा, तो उसका आरंभ हो जाएगा, और जब उसका आरंभ हो जाएगा तो उसका अंत भी होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता नहीं है। उसने, वो स्वयंभू है, उसने अपने आप को पैदा कर लिया बस, जैसे हम आत्माओं ने अपने आप को पैदा कर लिया, जैसे प्रकृति के पांचों तत्वों ने स्वयं को पैदा कर लिया, इसी प्रकार से समय भी। परमात्मा ने समय को भी पैदा नहीं किया, समय को नहीं बनाया कि आज से तुम समय शुरू हो जाओ। समय उससे पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। इन तीनों का कोई रचयिता नहीं।
और सृष्टि में बिठाता है ना?
हाँ जी,
सृष्टि में तो पता बिठाता है ना सबको, तो पुनः अपने अपने परमावस्था में तो लेके जाता है।
जी, बात यही हो रही है कि वो सतयुग की रचना करता है, वो सतयुग की रचना करने की विधि सिखाता है, परंतु वो संसार को बनाने की विधि नहीं सिखाता। संसार तो था, इसलिए हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन है सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु सृष्टि चक्र का आरंभ और अंत है। सृष्टि अनादि और अनंत है परंतु सृष्टि चक्र का आरंभ भी है और अंत भी है। मतलब ये बात हम पहले अलग तरीके से बताते आ रहे थे, परंतु ये बात आज समझ में आई है कि परमात्मा को हम इस क्वेश्चन में भी सेट कर सकते हैं कि परमात्मा सृष्टि का रचयिता नहीं, परमात्मा स्वर्ग का रचयिता। सारे परमात्मा को याद इसलिए करते हैं कि हमें स्वर्ग में ले चल, कोई ये याद नहीं करता कि हमें, बाकी तो कुछ भी कहते रहे, कहने को तो बात अलग है, परंतु कोई भी मतलब हमें कुछ बना दो, परमात्मा किसी को कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ वो आ करके हर कल्प एक ही विधि है, वो विधि आकर वो सत्य ज्ञान आकर सबको समझाता है। अब कौन उसे समझेंगे कौन उसे नहीं समझेंगे ये उस आत्मा का अपना पार्ट है। परमात्मा आकर सिर्फ रास्ता मार्गदर्शन करते हैं, कौन उस मार्गदर्शन को समझता है कौन उस मार्गदर्शन को नहीं समझता है ये उस आत्मा का अपना पार्ट होगा। परमात्मा ने तो केवल डायरेक्शन देना है, आप सतो प्रधान बनो, 100% प्योर बनो, 100% सत्य बनो। अब कौन कितना बनेगा वो उस आत्मा का अपना पार्ट हो जाएगा, वो उस आत्मा का अपना पार्ट हो, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट यूनिक है और हर एक आत्मा ने अपना पार्ट स्वयं लिखा है। तो हमें बड़ा क्लियर हो गया, परमात्मा ने आत्माओं को नहीं बनाया, परमात्मा ने प्रकृति को नहीं बनाया, परमात्मा ने समय को नहीं बनाया, इन तीनों से मिलकर के बना है पूरा वर्ल्ड ड्रामा, इस वर्ल्ड ड्रामा को भी परमात्मा ने नहीं बनाया। जैसे परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक एक्टर है, जैसे हम आत्माएं भी एक्टर हैं। बस अंतर हमारे में और परमात्मा में ये सबसे बड़ा है कि परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की एक एक एक्टिविटी को जानता है और हम नहीं था, वो आकर हमें याद दिलाते हैं। हाँ जी बोलो।
परमात्मा तो सत्व तमो रजो में नहीं आता,
नहीं आता,
हमें तमो तो में लेके जाता है।
हम सब आत्माएं सत्व से तमो में आती हैं और परमात्मा आकर हम तमो प्रधान पतित भ्रष्टाचारी आत्माओं को भ्रष्टाचारी बनने की विधि सिखाता है। इसी को कहा जाता है स्वर्ग बनाने की विधि, बनाने में सहयोग देता है, मार्गदर्शन करता है, बाकी वो संसार को नहीं बनाता, संसार को स्वर्ग बनाता है, संसार को नहीं बनाता। क्या वंडरफुल जो है ना पॉइंट है। ध्यान से हम आपके साथ मंथन करते हैं तो हमें कोई बात समझ में आती है, नहीं तो हम भी वैसे ही थे। बाबा की बहुत गुह्य मुरली होती है। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वहां और कोई खंड नहीं था, यहां तो बहुत खंड है। कहां कोई खंड नहीं था? स्वर्ग में, सतयुग में एक ही खंड था, और आज तो कितने खंड हो गए हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए, फिर पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो, सिर्फ क्या बन गए हो? पतित बन गए हो। तत्व प्रधान से सत्व रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया है, तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले क्या थे? पवित्र थे, पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ब्रह्मा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित परिवार प्रवृत्ति मार्ग में बन गए। अब वही ग्रस्त जब आश्रम था सत्युग में, आज हम क्या बन गए हैं? ग्रस्ती बन गए हैं, गिरी हुई हस्ती बन गए। कहां ग्रस्त आश्रम था? आश्रम को हमने जंगलों में भेज दिया और खुद क्या बन गए? ग्रस्ती, गिरी हुई हस्ती। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाता है। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन हमको सुख धाम में ले जाओ, हे पतित पावन हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई, आत्मा पुकारती है हे बाबा, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म है, अभी ये क्या है? अंतिम जन्म है, पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे, फिर 21 जन्म के लिए तुम क्या हो जाएंगे? बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम सुखी हो जाएंगे, बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी बातें छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है, कमाई क्या है? बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, ये कोई और बता ना सके, ये कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है, ये है सारी भावी ड्रामा की, ये है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए, और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते, देह अभिमान में आ गए तो फिर एक एक करके सारे विकार आते ही जाएंगे, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है, इसलिए क्या करना पड़ता है? भूतों को भगाना पड़ता है। इस नई दुनिया में इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना, इस दुनिया की किसी भी चीज में मोह नहीं रखना, इस दुनिया की किसी भी चीज में मोह नहीं रखना है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो, बस देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, देखते हो कि हम पुराने घर में रहे पड़े हैं, रह रहे हैं, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे ना, जब नए घर में जाएंगे तो किसको देखेंगे, नए को देखेंगे ना। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना, देखना पुराने को है और याद किसको करना है, नए को करना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने का को दुख दिया, आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आती तो बाबा कहते मेरे से पूछो क्या ये पाप है, बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे, क्योंकि सच समझ में आ जाएगा तो हल्के हो जाएंगे। पापों का बोझा बड़ा भारी है, 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई। सतयुग में, सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी, इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगते हैं, 5000 वर्ष लगते हैं कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन, संसार की जो उसकी बाप की जायदाद है उसका वो मालिक क्या होता है, बन जाता। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतना क्यों चाहिए, उतरना क्यों चाहिए। तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछ, वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछ। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही ये है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं, आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वे हमारा बाप टीचर है, गुरु भी है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका अंत कभी होता नहीं। किसका अंत कभी नहीं होता? बस सो जाते हो। हाँ जी, वो तो सारे जानते हैं चक्र का, तो चक्र तो चलता ही रहेगा, परंतु ये किसको कहा है इसे एक लाइन पहले ध्यान से याद करो। ये है पहली लाइन, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड कभी होता नहीं। किसका एंड नहीं होता? जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा।
भाई जी, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म आता ही रहेगा,
आता ही रहेगा। हाँ, ये नहीं है कि अब हम परम धाम चले गए हैं, अब हम आराम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4999 साल आराम करने के बाद भी संसार में आना है, 1 साल के बाद भी आना, आना तो पड़ेगा। और जो परम धाम का जो समय है वो तो कितना भी हो वो 1 सेकंड ही रहता। अभी सोए थे, अभी उठ गए, बस। चाहे कोई 1 साल बाद उठे तो चाहे कोई 4999 साल के बाद उठे। इनका एंड कभी होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है ये चक्र, है स्वदर्शन चक्र, घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भाव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकार में हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था कब अभी थोड़े ही बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, शिव बाबा। पढ़ाने वाला कौन है? सॉरी, शिव बाबा। बल इनमें प्रवेश करते हैं, ये भी स्टूडेंट है। ये है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है, वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं और यहाँ सिर्फ क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर चलना, सिर्फ याद में रहना, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है, ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त आत्मा का ये भ्रिकुटि तख्त है। ये भ्रिकुटि क्या है? तख्त है। जरूर भ्रिकुटि में ही बैठेंगे, पेट में थोड़े ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रिकुटी में, यहाँ से भी 3-4 इंच अंदर, किसी का सिर और बड़ा भी हो सकता है। मतलब इस जहाँ पर ये हमारी गर्दन के ऊपर रीढ़ की हड्डी आ रही है उसके ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है, वहाँ होता है आत्मा का।
आत्मा जहाँ आराम करता है,
आत्मा की सीट, इस भृकुटि के बीच में हमारा तख्त, इस भृकुटि के बीच में हमारा तख्त है, जहां आत्मा विश्राम करती तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो विश्राम नहीं कर सकती। शरीर को विश्राम की जरूरत है, तो आत्मा भी उस समय रिलैक्स हो जाती है। यदि उसके पास पार्ट है तो वो कहीं जाएगी, नहीं तो रिलैक्स हो जाती है, उसे भी कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, परंतु सांस लेना है, देखना है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लगातार चलती रहती। इस भृकुटि के बीच में हमारा तख्त है, अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत, उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं, तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी, आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव ये अकाल तख्त रहता, ये जो अकाल तख्त है यही अकाल तख्त रहता है जहां आत्मा आकर बैठती है। ये तुम समझते हो, उन्होंने फिर ये तख्त बनाकर नाम रख दिया है अकाल तख्त, कहां रखा है अमृतसर में। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहां बैठी है, तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अजन्मा अयोनि, ये सारी विशेषताएं परमात्मा के बारे में उन्होंने गाई। मनुष्य मंदिर में जाकर कहते हैं अत्यतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं जान, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं अत्यतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहां नारायण कहां, नामों की गिनती करते जाते, बाप कहते हैं वो सब है भक्ति, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है, वो मेहनत कोई से होती नहीं, ऐसी मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं एक नाटक भी है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करता, तुम बाप को याद करते हो माया तुमको और तूफान में ले जाती। माया का फरमान है रुस्तम बनो, रुस्तम होकर, रुस्तम से रुस्तम होकर माया भी क्या करती है फिर, माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस प्रकार के, इनमें किस प्रकार के योद्धे हैं, कोई बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे, कोई तो क्या है फिर तीखे है। सभी माया से युद्ध करने वाले, सभी माया से क्या करने वाले हैं, युद्ध करने वाले। बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए वो सारे बॉम्ब्स ट्रायल करते हैं, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम बिल्कुल शांति में बैठे, उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल नहीं सकते। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितना भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं। सतयुग में ये होती नहीं है, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। जहां होती है जो फिर विनाश में मदद करती है, क्या होती है जो विनाश में मदद करती है, क्या होती है? हाँ जी, एक जना बोलो तो स्पष्ट हो। हाँ, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं इस समय होती हैं, सतयुग में ये नहीं होती। सतयुग में सब पांचों तत्व मर्यादा में रहते और इस समय मर्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए इस समय जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो विनाश में मदद करती हैं, इस संसार को स्वच्छ करने में मदद करती हैं, परिवर्तन करने में मदद करती हैं। क्योंकि सारा पोल्यूशन जो आकाश तक फैला हुआ है, सारा का सारा बरसात ही, स्टीम ही, जब आग लगेगी ये एटम बम्स चलेंगे तो सारा वाटर स्टीम बन जाएगा और वहां तक सारा कुछ पानी में घुल जाएगा।
द्वापर युग में भी एक बार करती थी।
द्वापर युग में तो सॉलिड टूटता है, वो तो सॉलिड टूटता है, वो प्योर नहीं करता, वो तो इम्प्योर करता है। वो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं परंतु वो प्योर नहीं करती, वो तो और ही बेड़ा गर्क कर देती हैं। एक तो पृथ्वी को 23.5 डिग्री पर झुका देती है, जिसके कारण हाँ जी खंड खंड कर देती है। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने के कारण सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट अलग हो जाने के कारण इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और ये सारी ऋतुएं जो कर्क रेखा मकर रेखा ये सिर्फ द्वापर से शुरू होती है, सतयुग त्रेता में कर्क रेखा मकर रेखा नहीं होती। सूर्य की किरणें एक ही जगह पर पड़ती हैं, मौसम नहीं बदलता, जो जहां का मौसम है वैसा ही रहता है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल, हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता जाता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती नहीं, और यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी की बात नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिनसे बचने के लिए बाप समझी
गंद नहीं करती, तुम मनुष्य
आत्मा कैसे गंद करेंगे, होता ही नहीं। اس روحانی دھندے میں لگ جاؤ. من منا بھاؤ, بس اس میں ہی جن بن جاؤ. جن کیا ہوتا ہے؟ جن بن جائیں. جن میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ جن کا مثال دیتے ہیں نا, خالی نہیں بیٹھنا. وہ کہتا میں خالی نہیں بیٹھ سکتا, کام دو نہیں تو میں کھا جاؤں گا. مجھے کام دو نہیں تو کھا جاؤں گا. تو پھر بابا نے کیا کام, بابا نے کیا کام دو اس کو؟ کہ ایک بانس لیا, اس کے اوپر سر اور پھر اس کے اوپر سے نیچے. بابا بھی کام دیتے ہیں, نہیں تو مایا کھا جائے گی. باپ کا پورا پورا مددگار بننا ہے. اکیلا باپ تو نہیں کرے گا نا, باپ تو راجیہ بھی نہیں کرتا, تم سروس کرتے ہو. تم سروس کرتے ہو, راجائی بھی تمہارے لیے ہی ہے. باپ کہتے ہیں میں بھی مگدھ دیش میں آتا ہوں, مایا بھی مگر مچھ ہے, کتنی مہارتھی کو پاپ کتنے مہارتھیوں کو ہاپ کر کھا جاتی ہے. یہ سب ہیں دشمن. جیسے میڈک کا دشمن سرپ ہوتا ہے نا, تم کو معلوم ہے ایسی تمہاری دشمن ہے مایا. مایا تمہیں ڈائریکٹ کھا جاتی. تم کو معلوم ہے ایسا تو ایسے تمہاری دشمن ہے مایا. اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ. روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو نمستے نمستے. دھارنا کے لیے مکھیہ سار نمبر ایک, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है. देह अभिमान में कभी नहीं आना. इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना, किसी भी चीज में मोह नहीं रखना. माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना. बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है. बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है. वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा पाओ. बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं. اس لیے آپ کے نام سے ہی اب تک انیک بھکت الپکال کی خوشی میں آ جاتے ہیں. آپ کے جڑ چتروں کو دیکھ کر خوشی میں ناچنے لگتے ہیں. ایسے آپ سب خوش نصیب ہو, بہت خزانے ملے ہیں. لیکن سرو خزانے لیکن صرف سمے پر یوز کرو. چابی کو سدا سامنے رکھو, ارتھات سدا سمرتی میں رکھو اور سمرتی کو سوروپ میں لاؤ تو نرنتر خوشی رہے گی. نرنتر خوشی کا انبھو ہوتا رہے گا. سلوگن ہے, باپ کی شریش آشاؤں کا دیپک جگانے والے ہی کل دیپک، جگانے والے ہی کل دیپک ہیں. اویکت اشارے، آتمک سکتی میں رہنے کا ابھیاس کرو، انتر مکھی بنو. آتمک سکتی میں رہے باہر مکتا کو چھوڑ دو تو محنت سے سوچ جائیں گے، انوبھاؤ کے ساگر میں سما جائیں گے. ایک دو انوبھاؤ نہیں اچھا ہے، ایک دو انوبھاؤ کر کے انوبھاؤ کے تالاب میں نہیں نہاؤ. ساگر کے بچے انوبھاؤ کے ساگر میں سما جاؤ. اچھا، اوم شانتی. اور وستار سے جاننے کے لیے پرجاپتا برہما کماری ایشوریہ وشویدیالیہ کے کسی بھی سیوا کیندر پر ہو، اور یدی کوئی پرشن ہے کس نمبر پر 9213106986 پر 9650692927 پر واٹسپ کرے. مرلی منتر کیول گوگل میٹ پر ہی سن سکتے، اس کے لیے واٹسپ کر کے آپ لنک پراپت کر سکتے ہیں. آڈیو میں آپ کے پاس آئے گی، سیم آڈیو آپ کے پاس آئی ہے، اور اسی آڈیو کو یعنی آپ ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو گوگل میٹ پر دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب یا کسی بھی مادھیم سے ویڈیو کو بھیجنا منع ہے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا. اوم شانتی.